ओम शांति। आज की बच्ची के क्लास कराने के लिए खास हमारे बीच पहुंचे हैं ब्रह्मा कुमार मोहन भाई सिंघल। आप और हम सब एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कई पहचानते होंगे लेकिन कई नए हैं, इसलिए थोड़ा सा परिचय, लेकिन इनका परिचय बड़ा विस्तार से है, फिर भी हम संक्षिप्त में प्रयत्न करेंगे। तो आपने 1962 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। पढ़ाई के दौरान आपने एमटेक की पढ़ाई प्राप्त करने के बाद 28 सालों तक ओएनजीसी के कई प्लांट्स जैसे आसाम, गुजरात, उत्तराखंड आदि में कार्यरत रहे और वहां भी आपने अनेक बाबा के सेवा स्थान का शुभारंभ अर्थात खोलने के निमित्त बने। शुरू से ही आप सेवा में सक्रिय थे, आज तक है। आज देखते हैं कि इतनी आयु होने के बावजूद भी आप सेवा में दौड़ भाग करते हुए आपके जीवन में जो प्राप्ति है, आपने जो सत्य पहचाना है, वो सबके कानों तक कैसे पहुंचे, बड़ी लगन से सेवाएं देते हैं। लेकिन आपने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ओएनजीसी से प्राप्त करके इसी सेवा में 1996 में जब से हमारा ज्ञान सरोवर बना, शुरू हुआ, तब से ही आप वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं और खास अपनी विंग्स, जैसे 20 जितनी विंग्स है तो एकेडमी में कोऑर्डिनेटर का विशेष सेवा का कार्य आप कर रहे हो और साथ साथ हमारी संस्था की मैनेजमेंट कमिटी में भी आप सदस्य हो। और ज्ञान सरोवर परिसर में भी सेवा देते हैं और जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर, अभी कुछ
बदला,
वाइस चेयरमैन के रूप से आप सेवाएं दे रहे हो। और आपने कई पर्यावरण जागृति के भी अभियान निकाले, कई सेवाएं उसकी की, उसके फलस्वरूप भी आपको अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो आपदा प्रबंध अभियानों में भी आपने सुचारू रूप से आयोजन किया है और हमारी जो विभिन्न प्रांतों से 12 पद यात्राएं निकाली गई थी उस समय भी आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे और आपने उसमें भी बहुत अच्छी सेवाएं दी। कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी आपने अपना हिस्सा लिया है, कई प्रदर्शनियों का निर्माण भी किया है अलग अलग विंग से, अलग अलग टॉपिक से आदि पर, और करीब आपने 20 शहरों में स्पिरिचुअल आर्ट गैलरीज निर्माण करने में भी विशेष योगदान दिया है। विदेश यात्राओं में भी यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल बांग्लादेश आदि की भी आपने कई बार यात्राएं की है और सम्मान अवार्ड में जैसे बताया पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2013 में राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइडोल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाबा जो भी सेवाएं देते हैं अथक बन करके बड़ी लगन से आप सेवाएं दे रहे हो, जो दुनिया को भी अवार्ड देने का भाव पैदा होता है, तो आपकी ऐसी अमूल्य सेवाएं। और साथ साथ महत्व की बात यह है कि आपने साकार बाबा की भी पालना ली हुई है और ये आपका एक परम सौभाग्य था कि साकार ब्रह्मा ने अपना अंतिम देह त्याग जब किया उस समय आप बाबा के साथ थे अर्थात यहां ही थे, इसलिए आज ऐसा कुछ टॉपिक रखा कि साकार ब्रह्मा बाबा ने की अंतिम अवस्था जो कर्मातीत अवस्था जो आपने अपनी इन आंखों से देखी वो भी हम सब सुनेंगे। आपने देखा है लेकिन जो देखा है उसका हम सब श्रवण करेंगे और ऐसे ही अनुभव करेंगे, हम वहां ही उपस्थित है। तो ऐसा बहुत अच्छे अनुभव युक्त ये दृश्य है या ये बातें हैं साकार ब्रह्मा बाबा के साथ की भी और अंतिम समय की भी, वो आपके मुख से हम बड़े एकाग्रता से सुनेंगे क्योंकि सबको अच्छा लगता है बाबा मम्मा की बातें सुनना भी, उससे भी बहुत अच्छी हमें प्रेरणाएं मिलती है। तो ऐसे आज मैं ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी को अनुरोध करती हूँ इस विषय पर आप अपने विचार सबके सामने रखे। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे अथवा ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि से लेकर साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सभी ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। जब साकार की बात हो रही है तो हम सब कुछ क्षण के लिए उसी लहर में ही ओम ध्वनि करेंगे, अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए पहले ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ शांति की ध्वनि ही हम लोगों को आज जो बाबा की मुरली हम सब ने सुनी उसका जो मुख्य थीम है उसमें स्थित कर देती है। आज मुरली का क्या मुख्य सोल था, क्या था मुख्य का? देही अभिमानी बनने के लिए है, बनने से क्या फायदे होंगे? चार फायदे बताए बाबा ने, शीतल हो जाएंगे और विकारों की वास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे और फूल बन जाएंगे। बस इसके अंदर ही आज का जो पुरुषार्थ का सार है फरिश्ता बनने का, वास्तव में इन चारों बातों के अंदर वो समा जाता है। बाबा ने कहा देही अभिमानी हूँ, तो इसलिए फरिश्तों के चित्र दिखाते हैं। कैसे चित्र दिखाते हैं? उसमें ये आंख नाक कान वगैरह कुछ नहीं दिखाते, बस जैसे एक बाहर किसी रूपरेखा कई बार लाइट में दिखाते हैं, यानी कि वो सब कर्मेंद्रियों से बिल्कुल मुक्त हो गए, न्यारे हो गए। जब तक शरीर है तब तक ये सब तो रहेगा ही शरीर, लेकिन उन सब के भान से न्यारे हो जाना। तो इसीलिए फरिश्तों को कई बार एकदम ऐसा लाइट स्वरूप में और बिना किसी कर्मेंद्रियों के आभास के वो दिखाया जाता है, शीतल हो जाएंगे। वैसे तो फरिश्तों के लिए बहुत बातें हम सब ने सुनी हैं, सुनते आते हैं, जिसका कोई देह से रिश्ता नहीं, और फरिश्तों की क्या क्या बातें सुनते हैं। बिल्कुल न्यारे प्यारे होते हैं, बस स्वर्ग कर्म करते हुए भी जैसे कर्मों से न्यारे, लेकिन शीतल हो जाएंगे। ये बाबा ने अंत समय की ही बात बताई है, क्योंकि जब सब हमारी कर्मेंद्रियां, जब पहले हमारी विचारधारा शीतल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बाहर की इंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। तो शीतल वर्ड, हाँ, शब्द जो है किसके अगेंस्ट में आता है? अग्नि के। तो बाबा ने बताया है कितने प्रकार की अग्नि होती है, जो हम बच्चों को और पूरे संसार की आत्माओं को अंत तक फेस करनी है, और अंत में जब उन अग्नियों से पार हो जाएंगे तो बिल्कुल शीतल हो जाएंगे, जैसा आज बाबा ने कहा। तो मुख्य बाबा ने तीन चार प्रकार की अग्नियों का हम बच्चों को बताया है। सबसे पहली है विनाश की अग्नि। तो अभी हम कहते आते हैं सदा कि अब विनाश होने वाला है, सृष्टि परिवर्तन होने वाली है। बाबा ने भी वही साक्षात्कार किया, और अभी तो जैसे मृत्यु का बाजार बिल्कुल गर्म होता जा रहा है, जो बाबा ने कहा ना। तो इसलिए एक है विनाश की अग्नि, तो ये तो होगी ही, तो इस अग्नि से बचने का क्या साधन है? कर्मा की। और विनाश की अग्नि से बचने का क्या साधन है? बहुत सहज, विनाश से विपरीत क्या चीज है? निर्भय बन जाए। विनाश तो होगा ही, उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव से हम बचे रहें, उसके लिए है निर्भय हो जाए, भय मुक्त हो जाए। भय किस चीज का होता है? कौन सा बड़ा? मृत्यु का भी भय होता है, सत्ता खोने का भय होता है, जो संबंधी हैं उनसे बिछड़ने का, मित्र संबंधी से बिछड़ने का भय होता है, और अनेक प्रकार के जो चीज यहाँ की है कलियुगी दुनिया की, उनसे बिछड़ने का भय, उनको खोने का भय होता है। तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया है उन सब का? क्योंकि ये सब देह से संबंधित है, जितना है विनाश भी, क्योंकि भय तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय, देह छोड़ने का भय। तो इसीलिए उसके लिए निर्भय होते चले, और निर्भयता के लिए तो बाबा ने बताया आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। उस भान में जितने रहेंगे तो निर्भय होते जाएंगे, भय से मुक्त होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली विनाश भले अपने आप होता रहेगा, लेकिन अगर हम निर्भय होंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा उसकी आंच हम तक नहीं पहुंचेगी, विनाश बिल्कुल पास तक आकर, वहां तक आकर के रुक जाएगा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो ये एक बात है विनाश की, अग्नि से बचने का। विनाश होगा लेकिन उसकी अग्नि के ताप से, आंच से हम बच सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हम फरिश्ता स्वरूप बनते जाएंगे उतना उतना इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरी है अग्नि विकारों की अग्नि, एक है विनाश की अग्नि, एक है विकारों की अग्नि। तो विकारों के बाहरी स्वरूप से तो हम सब काफी हद तक बच गए, और बाबा ने पहचान दे दी मुख्य मुख्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और छोटे मोटे ईर्ष्या द्वेष पर निंदा पर चिंतन आदि आदि वो सब। लेकिन इन सब के अंत में ये एक होता है बचना, और दूसरा होता है बिल्कुल उसके प्रभाव से, जैसे बाबा ने कहा है हम कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है वो भी जीवित हो सकता है, मृत्यु के बाद जला दिया, फिर जलाने के बाद राख भी प्रभावित कर दी, फिर भी जीवित हो सकता है। यानी कि हम समझते हैं कि हमने कोई संस्कार कोई विकार खत्म कर दिया, लेकिन अगर उसका एक अंश का वंश भी रह गया जरा सा, तो वो अंत में बहुत बड़ी अग्नि का रूप धारण कर लेगा। मोटे तौर से हमें लगेगा कि वो विकार के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली। तो उसके अंदर, इसीलिए भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, जब कोई शरीर छोड़ता है जला दिया राग प्रवाहित 13 दिन तक, तो 13वें दिन तक जब सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तब समझते हैं वो आत्मा जैसे उसका चली गई, उसका प्रभाव चला गया और अब हमें अपनी दूसरी नॉर्मल लाइफ को लीड करना है। तो इसीलिए ये विकारों की अग्नि से बचने का क्या साधन है, एक है बाबा ने कहा अपने आदि और अनादि वंश को याद रखो। हमारा आदि वंश कौन सा है, और अनादि निराकारी, तो सब जानते हैं अनादि गुण हमारे कौन से हैं, आदि गुण कौन से हैं, वो जितना जितना याद रहेंगे उतना उतना बस भाई आत्मा, बाबा ने बताया जो आत्मा के 7 गुण है अनादि सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति आदि आदि, और ऐसे ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण वगैरह, वो 16 जो गुण है जो देवताओं के गुण कहे गए। तो आदि अनादि वंश याद रहेगा तो ये भी विकारों की अग्नि से बचे रहेंगे। इसमें भी मुख्य रीति से देह अभिमान, जैसा आज बाबा ने बताया ना, देह अभिमान से बचने की साधन। फिर तीसरी और कौन सी अग्नि है, ये सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं, विनाश स्थूल से शुरू हुआ फिर विकार और सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म कौन सी अग्नि है, जो अभी बाबा हम ब्राह्मणों को खास उसके प्रति सावधान करते हैं। ब्राह्मण जीवन में जितना आगे बढ़ते जाते हैं ये मोटी अग्नि पता नहीं चलेगी, लेकिन सूक्ष्म कौन सी, वो बाबा ने कहा तीसरी है लगाव और झुकाव की अग्नि। ये अग्नि जो है पता भी नहीं चलेगी, लेकिन ये लगाव और झुकाव कहीं का, ये हम बच्चों को बहुत, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, बहुत ऊपर तक चढ़ भी गए और कोई ऐसा आया तो बहुत नीचे आ भी जाते हैं। तो ये लगाव और झुकाव की अग्नि ये हमें फरिश्ता बनने तक, हाँ मनुष्य से, और हमें अच्छा मानव बनने के लिए देवता की तरफ रास्ता बढ़ाने के लिए, तो ये सब बहुत सहयोगी हैं, लेकिन अंत में फरिश्ता हो करके हम उड़ जाएं, व वहां तक भी अगर पहुंच करके भी लगाव झुकाव की भी कुछ थोड़ी अग्नि है, जिसे बाबा कहता है भाई ये अच्छा लगता है, इसका ये सेवा अच्छी लगती है थोड़ा, तो भाई गुण है, बाबा कहता है ये याद करो, ये गुण भी किसने दिए, देने वाला भी बाबा है, किस आत्मा की तरफ अगर या रहा झुका हो तो वो भी हमें फरिश्ता तक नहीं पहुंचने देगा, और उसके आगे तो फिर बात ही नहीं। और चौथी है कौन सी अग्नि, प्रायश्चित की अग्नि, क्योंकि जब ये सब जानते हुए भी अगर हम नहीं कर पाते हैं जितनी हम चाहते हैं तो बाद में तो प्रायश्चित ही एक वो रह जाता है, और ओहो बाबा आप आए भी, भगवान आया, हमने पहचाना भी जाना भी, लेकिन फिर भी उसके जानने के बाद भी हम उतना हासिल नहीं कर पाए जितना हासिल करना चाहिए था, तो बस वो ही हमें अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर खाता रहेगा, और जब प्रायश्चित ही होता रहेगा खुशी नहीं रहेगी। वो जो बाबा कहता है मगन अवस्था चाहिए, वो मगन अवस्था नहीं रहेगी, जब खुशी नहीं है मगन अवस्था नहीं है तो फिर क्या होगा, प्राप्ति नहीं हुई, तो अंदर ही अंदर और वही फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। एक होता है बिल्कुल कोई याद ना रहे, लेकिन एक होता है अंतमति सोगति, अगर यही प्रायश्चित में ही रह गए तो फिर वो याद आती रहेगी। तो हम सबके सामने रोल मॉडल कौन है जो इन सब से निकल करके जिसने कि अपनी मंजिल को प्राप्त किया, कौन है, ब्रह्मा बाबा, हम सभी जानते हैं। वो भी देखा जाए तो सब परिवार वाला था, गृहस्थी था, व्यापारी था, संसार में अच्छा नाम कमाया हुआ था, पैसे कमाने की भी वो थी इच्छा, वो भी करा, जीवन कहानी में मिलता है ना उनके, उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, तो बस पत्नी ने कहा जब बाबा लगभग 50-55 आयु के थे कि भाई अब हम सबको ये सब छोड़ के, सब बच्चे वगैरह के जिम्मेवारी पूरी करके अब हमें थोड़ा काशीवास करना चाहिए, तो बाबा धन कमाने में तो बड़े निपुण थे, तो कहा कि अभी थोड़ा इतना और कमा ले और फिर उसके बाद ये करेंगे, यानी कि लौकिक रीति से भी हाइट की चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे, और फिर जब हम सब जानते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद फिर तो बाबा में परिवर्तन और वो सब शुरू हुआ। तो ये जो आज बाबा ने बोला है, जितना ये फरिश्ता स्वरूप, दूसरा विकारों की बू निकलती जाए, ऑटोमेटिकली जब देह अभिमान से होंगे विकारों की बू फूल बनते जाएंगे, ये भी बोला ना, कौन सा फूल बनते जाएंगे, हाँ हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन शुरू भी फूल से होता है और अंत भी फूल से होता है, इसका भाव क्या है, हाँ हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है कमल फूल से, पहले दिन जब आते हैं तब यही ज्ञान दिया जाता है, कमल के समान पवित्र बनो, घर गृहस्थी में ही रहना है, उसके कीचड़ से अलग रहना है, आदि आदि, उन सब से तो हम परे हो ही गए, तभी तो यहाँ बैठे हैं, कमल फूल समान तो जीवन हो गया, लेकिन अंतिम जीवन गुलाब के फूल के समान, क्या विशेषता होती है गुलाब में, है? क्या स्थूल, हाँ खुशबू होती है, और क्या होता है, जब गुलाब पूरा परिपक्व हो जाता है तो वैसे गुलाब की पंखुड़ियां जो है ना सब बगल बगल होंगी, लेकिन कनेक्टेड नहीं होंगी एक दूसरे से, जुड़ी नहीं होती हैं, बस एक दूसरे के ऊपर लगता है जैसे, लेकिन जुड़ी नहीं होती, और जितना परिपक्व हो जाएगा गुलाब, थोड़ा सा यूं करो सब पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, क्योंकि उन सब का कनेक्शन एक बीच पेडल से ही होता है, जो बीच में होता है, पंखुड़ियों का आपस में कनेक्शन नहीं होता है, ऐसे हम सब जो गुलाब के पंखड़ी बाबा कहता है चैतन्य फूल, तो आपस में साथ साथ रहेंगे परिवार में सब, लेकिन बुद्धि योग किसी के साथ आपस में ना हो और बस एक बाबा के साथ ही हो, तो जैसे ही बुलावा आवे कि हाँ बच्चे आओ, और बस थोड़ा समय से जाया और हम चल दें, नहीं तो अंत मते सो गते। थोड़ा भी कहीं कनेक्शन अगर वो हुआ तो वही कनेक्शन खींच लेगा। तो इस कारण से ये आवश्यक है कि एक हम आपस एक बाबा के साथ ही वो रखते चले। और इसीलिए अभी बाबा ने जैसे बताया हुआ है कि आप बच्चों को बस पेपर तो सबके सामने आते हैं, पास होते हैं तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेपर पास करके आए हैं, लेकिन अभी बच्चों के सामने दो पेपर विशेष आने हैं। कौन से दो पेपर है? मोह का। अच्छा, वेरी गुड। और देखो, एक पेपर आना है शरीर का, क्योंकि हिसाब किताब सबसे चुक तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये अंतिम पेपर जो बाबा के सामने, मम्मा के सामने, दादियों के सामने, ये जो शरीर का पेपर है, ये हमारा अंतिम पेपर है। ये सबके सामने आने को, ये ना समझे भाई मैं तो हेल्दी हूँ, जवान हूँ और मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आत्मा को जो इतनी सारी बीमारी है, 63 जन्मों की जो बीमारी है, वो बीमारी तो सभी के पास है और आत्मा का असर शरीर पर है। तो इसीलिए ये पेपर जो अंत में सबके सामने आएगा, पहले तो संबंध और वो सब तो मोटे पेपर हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये जो पेपर अंत में आएगा या आ रहा है, उससे बचने का क्या साधन है? आएगा सबके पास अंत में, क्योंकि जो भी हिसाब किताब रहा हुआ है वो पूरा इस से ही होना है। अंत में ना सेवा होगी, ना कोई और साधन होंगे, कोई सब नहीं, ये शरीर ही होगा, तो सारा चुकतू इस शरीर के साथ ही होगा। थोड़ा भी होगा तो बहुत बहुत दर्द की अनुभूति होगी, और लेकिन उस सब के लिए बाबा क्या बता रहा है, कैसे हमें करना है, बचने का साधन जो हम सब ने, जिन्होंने साकार बाप दादा का भले चलो देखा नहीं भी है, लेकिन सुना तो सबने है बाबा का इतिहास, यज्ञ का इतिहास सबने सुना है। तो एक गुण विशेष धारण करना है, जो अंत में बाबा भी उस गुण को धारण करके ही अंत में इतने कम समय में कर्मातीत बन गए। देखो कितने समय में कर्मातीत बन गए, सिर्फ 33 वर्ष में, 33। 1936 में शुरू हुआ ज्ञान और 69 के शुरू में तो बाबा अव्यक्त हो गए, संपूर्ण बन गए, फरिश्ता कर्मातीत हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो अंतिम पेपर था, इसके पास करने में एक गुण जो विशेष आवश्यक है, जब चाहे हम देह में आए पार्ट बजाए और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, एक सेकंड में आए। और ये बाबा का गुण कैसे प्रदर्शित होता था, हमें याद है कि जब बाबा मिलते थे पार्टियों से, तो या तो 3 जगह होते थे जब बाबा पार्टियों से मिलते थे, या तो बाबा अपने कमरे में, तब तो बाबा का कमरा बहुत छोटा था, जहां पर बस पलंग पड़ा हुआ है उतने तक ही, और पीछे से दरवाजा होता था, आगे जहां बैठते हैं सब वहां, वो कमरा तो बाद में ऐड किया। तो 2-3 लोग होते थे, 2-3-4 तो बाबा के कमरे में मिल लेते थे, अगर और थोड़ी बड़ी पार्टी होती थी 7-8 की तो बाबा की झोपड़ी में मिलते थे, और ज्यादा होते थे 12-15 तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो टाइम दिया हुआ होता था, भाई 10 बजे मानो दिल्ली पार्टी आएगी, 10:30 बजे बम्बई पार्टी आएगी, 11 बजे कलकत्ता पार्टी। तो ऐसे टीचर आती थी जो ब्राह्मणी होती थी, और वो देखती थी बस बाबा बैठे हैं तैयार हैं, बहुत समय के पाबंद थे बाबा, तो बैठे हैं, और वो आके पूछते थे, पूछने लिए आती थी, बाबा पार्टी लाई हूँ, वो आ जाए। तो बाबा बाबा, अब बाबा बैठे हैं, आंख खुली भी हुई है सब, लेकिन कोई ध्यान में भी नहीं है, लेकिन देह से जैसे बिल्कुल न्यारे। और जब ब्राह्मणी आके बाबा बाबा कुछ बोलती थी, तो कई बार बाबा को जैसे एक ऐसा लगता था जैसे बाबा अब कॉन्शियसनेस को खींच करके शरीर में ला रहे हैं, नहीं तो कॉन्शियसनेस विड्रॉ करके चेतना बाबा जैसे मूल वतन सूक्ष्म वतन बाबा के पास या देह से न्यारे होके रहते थे। तो हाँ बच्ची, क्या बोला? बाबा फलानी पार्टी आई है, ले आऊं? टाइम हो गया। हाँ हाँ बच्ची, बाबा कहते थे, पार्टी आके बैठती थी, बाबा सबसे मिलते थे। हाँ, और मिलके बाद फिर हर एक से को वैसी भासना, सबसे बड़ी कभी अगर चलते फिरते भी बाबा मिलते थे तो बस बाबा ऐसे हाथ फैला देते, बाहर जैसा चित्र देखा ना, आओ बच्चे आओ आओ मीठे बच्चे, बस ऐसा करा। अब बैठ के वहां तो यहाँ तो बैठ के ही मिलते थे, मिले और बस सबसे बड़ा ये होता था कि विदेही हो जाते थे, हम सब देहवान भूल जाते थे। तो फरिश्ते का एक ये भी अनुभव है कि हम खुद तो अनुभव करें, लेकिन दूसरे को भी हमारे से ऐसा अनुभव हो कि जैसे ये देह से न्यारे है, अलग है। और बस थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कॉन्शियसनेस जैसे कि ये विड्रॉ हो जाती थी हमारी सबकी, और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ आओ, जैसे बाबा फिर चेतना का आवाहन करते थे। हम सब आते थे शरीर में, कोई शरीर से कोई आत्मा चली नहीं जाती है, लेकिन जैसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अशरीरी, अभी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बाबा में इतनी मैग्नेटिक पावर थी कि बस थोड़े समय के लिए बिल्कुल अशरीरी कर देते थे। फिर उसके बाद टोली वगैरह खिलाया बाबा ने, और हालचाल पूछा, नाम पूछा, फिर एक जाता था दूसरा आता था उसको भी यही अनुभव होता था अशरीरी का, तीसरा आता था। और बाबा फर्स्ट मीटिंग में तो अक्सर करके यही करते थे, बुलाते थे, पूछते थे नाम क्या है, और लक्ष्य ये होता था ये हमारा नया जन्म जो हुआ है बाबा इस पुराने जन्म की सब बातों को भुला दे। तो हर एक बच्चे को ये जन्म की अब कैसे भूले, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाबा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बाबा से जब पहली बार मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, जैसे श्री मोहन बोलते हैं ना श्री, तो बाबा से कहा ऐसे श्री, तो क्या बोला बच्चे, बाबा श्री नाम है ये श्री, श्री। अच्छा, बाबा बड़े जॉली भी थे, और सबसे बड़ी ब्यूटी ये, हर एक को ये लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, बुजुर्गों के साथ, उस समय हम भी 16-17 साल के थे। अच्छा श्री, ओ आओ आओ दादी, आओ आओ कुमार का, आओ आओ गंगे दादी, आओ आओ, देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला जो बाबा से भी ऊंच है, ऐसा हो सकता है? हमें तो बड़ा ऑकवर्ड सा थोड़ा लगा, ऐसा कैसे? फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया, देखो बच्चे अभी तो बाबा भी अपने नाम को श्री नहीं कह सकता, श्री किसको कहा जाता है, जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो देवताओं की आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी, अभी तो शरीर भी विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा भी इतना तो अपवित्र हो गई है, तो अब तुम्हें बस मोहन जैसा बनना है, और मतलब श्री जैसा तो बनना है, अब तुम्हें बाबा नाम मोहन देता। तो बाबा लोगों को जो भी आते थे, कईयों को अपना नाम भी, किसी का नाम माया देवी होता था, बाबा भुला देता था, अरे माया का क्या काम अभी है, किसी का नाम कुछ भी, तो ज्ञान से। तो इसका ये मतलब नहीं जिनको नाम नहीं दिया, हर एक को ये समझना चाहिए ये मेरा नया जन्म है और पुराने जीवन की सारी बातें जैसे खत्म हो गई है। तो एक ये जो है बात, इस बात को सदा ये स्मृति में रहेंगे, ये मेरा नया जन्म है, पुरानी कोई भी इस जन्म की बात जो ब्राह्मण मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है वो मेरे से कोई संबंध नहीं रखती है तो उससे क्या होगा कि फरिश्ता स्वरूप की तरफ सीधा बढ़ते ही चले जाएंगे और बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। और इसमें तो एक तो बाबा का ये शरीर का पेपर, और इसके लिए हमें ये अभ्यास बार बार करना चाहिए, बीच में जब भी आए जो भी पार्ट है बजाया, लौकिक पार्ट जो भी जीवन में मिला हुआ है, अलौकिक लौकिक पार्ट नौकरी धंधे परिवार का, उसके बाद फिर शरीर से न्यारे हो गए। तो शरीर के इस पेपर में अंत में जब आएगा तो कभी भी फेल नहीं होंगे, एकदम पास होके आत्मा बस मक्खन से बाल की तरह निकल करके चली जाएगी, कोई चीज खींचेगी नहीं। तो एक तो ये पेपर बाबा ने बताया है, और दूसरा पेपर कौन सा आएगा और जो बच्चों के सामने आता है, प्रकृति का भी है वो तो आना ही है, अपने ब्राह्मण परिवार का पेपर। परिवार तो बढ़ता जाता है, और जब परिवार में हम देखेंगे अरे ये अभी इतने 25 साल पुराने 40 साल पुराने अभी भी इनके अंदर ये संस्कार जो ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, अभी भी ये बाहर का खा लेते हैं, अभी भी ये पिक्चर देख लेते हैं, अभी भी ये, तो जैसे ये जो आएगा तो इससे बचने का साधन बाबा ने बताया, ये आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो क्या बुद्धि में रखे, हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी में तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए, भले पुराने हैं लेकिन अगर ये धारणा नहीं है तो वहां जाके साधारण पद के अधिकारी हैं। मुझे तो नंबर वन जाना है, लास्ट सो फास्ट जाना है, भले उनमें किसी में संस्कार हो, मुझे अपने अंदर ये कमजोरी न देखनी है न धारण करनी है। तो इस प्रकार से राजधानी स्थापन हो रही है ये हम बुद्धि में रखेंगे तो किसी भी परिवार वाले की कोई कमी कमजोरी देखने में नहीं आएगी और हम एकदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा ने अंत में ये कैसे अवस्था को पाया, क्योंकि हम 62-63 से जब से बाबा से अनेक बार मिलते रहे, मधुबन में भी दिल्ली में भी 2 बार मिले, कानपुर में मिले, बाबा तो पहले कई जगह जाते थे बड़े सेंटरों पर, आसपास वाले सब लोग आते थे मिलते थे, कई दिनों तक बाबा की मुरली सुनते थे आदि आदि। तो बाबा को जब पहले हम देखते थे बाबा टाइम देते थे, मिलते थे, बात करते थे, फिर धीरे धीरे बाबा अंतर्मुखी और होते गए। 65-66 में हमने देखा थोड़ी भी कोई भी बात बताते थे, एक दो लाइन बाबा सुनते थे और उसके बाद कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, अच्छा ये कर लो ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हम लास्ट में भी मिले, हर साल मिलते थे वैसे, लेकिन हमें एक सौभाग्य ये मिला जैसा दीदी बता रहे थे कि भाई 18 जनवरी को हम यहीं थे, हम एक्चुअली इंजीनियरिंग पास करके ONGC में आसाम में पोस्टेड थे, और जब आसाम जा रहे थे हमारी दिल नहीं थी जाने की, बाबा ने कहा बच्चे जाओ वहां पर, तुम नहीं जा रहे हो बाबा तुम्हें भेज रहा है, और वहां बाबा के बहुत भोले भाले बच्चे हैं और उनको बस जाके तुम्हें संदेश देना है और वो बाबा का को पहचान लेंगे। और यही वास्तव में देखा कि थोड़े समय में ही बहुत लंबी चौड़ी क्लास हो गई। तो वहां से और बाबा ने एक शब्द बोला था, बच्चे जब तुम्हारा वहां काम हो जाएगा तो बाबा तुम्हें बुला लेगा। तो वहां गए और बस जनवरी मास था 69 का, तो हम देहरादून से गए थे जहां हेडक्वार्टर होता था ONGC का, और वहां बहन जी का एक बार पत्र आया कि भाई यहाँ हमारा म्यूजियम बनाने का विचार है, आप थोड़े दिन छुट्टी लेके आ जाओ तो यहाँ हम लोग म्यूजियम मतलब शुरू कर सके। तो ये हमने बाबा को बताया, ये लिखा, तो पहले ईमेल और ये सब तो होते नहीं थे, फोन भी बड़ा लैंडलाइन मुश्किल से मिलते थे, तो बस जल्दी पत्र व्यवहार या टेलीग्राम वगैरह से कहा जाता था और बाबा वैसे ही उत्तर देते थे। तो बाबा को लिखा तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे जाओ लेकिन पहले यहाँ आओ और प्लेन से आओ, इंडिकेशन बाबा ने जैसे दे दिया। जनवरी मास का महीना था, तो बहुत जल्दी जल्दी हम छुट्टी ली, हमारे लौकिक पिताजी को भी लिख दिया और वो भी आए और हम लोग 17 जनवरी की सुबह 1969 यहाँ पहुंच गए। और उन अंतिम दो दिन में बाबा की कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का सौभाग्य मिला। तो क्या क्या लक्षण देखे वो हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो पहला एक लक्षण तो ये देखा कि बस 17 और 18 जनवरी को बाबा से कई बार मिलने जाना हुआ, कोई की और पार्टी नहीं थी तो हम बाबा से बस फ्री होके मिला करते थे। तो बाबा के सम्मुख जाते थे, मन में होता था भी ये पूछेंगे कि भाई ये पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा दो चार बातें खास पूछते थे, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, कैसी सेवा चल रही है, आगे क्या प्लान लेके जा रहे हो, आदि आदि ऐसे। तो सोच के गए तो बस बाबा को बताएंगे, पूछेंगे। तो बाबा दृष्टि दी, और बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, तो दृष्टि देते ही बाबा ने अंदर के मनोभाव पढ़ लिए। बस बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने मन के भावों को पढ़ लिया। और इसी को कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो मन के भावों को वो ही पढ़ सकता है जिसके अपने मन में कोई भी व्यर्थ विचार नहीं चल रहे होंगे, नहीं तो वो विचार मिक्स हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा ये उसके बाहर वाले के विचार है या मेरे विचार है। तो एक ये लक्षण देखा, क्योंकि करीब 6-7 बार मिलना हुआ बाबा से दो दिन में, 17 और 18 तारीख को, तो हर बार ऐसा हुआ बस बाबा ने पढ़ा और ये पूछने आए हो, हर बार अलग अलग, और बाबा ने मन के भावों को। तो एक तो ये बाबा की हमें प्रेरणा सबको रखनी है, अगर हमें भी कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्वरूप की, व्यर्थ को अभी बिल्कुल ही तिलांजलि दे दे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है, पहले शुरू में एक बार आएगा, थोड़ा मन में हल्की सी हलचल तो नहीं बल्कि जैसे चंचलता जैसे होगी, कुछ भी अगर संकल्प आया लेकिन वहीं पर रोक दिया। इसीलिए बाबा ने कहा है कोई ऐसी कमजोरी आती है तो उसे दूर से ही रोक दो, क्योंकि वो अगर पास में एक बार आई, दो बार हमने आह्वान कर लिया, तीन बार, बस फिर तो अंदर वो घर कर जाएगी, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो ये कि मन के अंदर कोई भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि अंत समय ये ही काम में आना है, जब बहुत अनेक आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी और हमें उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। 18 जनवरी को हमें याद है कि बस बाबा ने ना सुबह आके योग कराया और कोई भी क्लास में मुरली नहीं चलाई, याद प्यार देके बाबा चले गए। बहुत ऐसा कभी नहीं होता था मुरली ना चलाए, लेकिन बाबा को जैसे प्रेरणा आए मुरली चलाने की, लेकिन शिव बाबा जैसे बार बार आज बच्चों को शक्ति से भरपूर कर दो, तो सबको योग कराया बाबा ने। फिर उस दिन बाबा ने ना, देखो कोई भी काम होता है ना तो अंत में, अब बाबा को तो आभास हो गया था, जब कर्मातीत अवस्था के हम भी निकट होंगे हमें भी आभास हो जाएगा भीष्म पितामह की तरह कि हाँ अब मेरा समय आ गया है। तो अगर बाई चांस कोई भी कार्य अधूरा रहा हुआ होगा तो वो कार्य हम कर सकेंगे, इतनी लाइन की क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य अधूरा होगा तो वो अंत समय याद आएगा और वो आत्मा को निकलने नहीं देगा इस शरीर से। तो बाबा के भी 2-3-4 कार्य अधूरे रह गए थे। वैसे बाबा ने समेटना तो शुरू कर दिया था 1965-66 से ही, बहुत सारी ड्यूटी दूसरों को भी देते गए बाबा, वो तो लंबी बात है, समय कम है, लेकिन मैं अंतिम दिन की बात बता रहा हूँ। तो उस दिन बाबा ने कहा क्लास से आके, ईशु दादी जो नीचे हैं, तो जो बाबा की पीए आप सब जानते हैं, तो पच्चीस आज जितने भी पत्र लिखाने हो पत्रों के जवाब लिखा दो, एक भी पत्र ऐसा ना रहे जो बच्चों को ये रह रहे बाबा के पत्र नहीं मिला। यानी इंडिकेशन था कि आज जैसे आखिरी दिन है कोई भी पत्र अनआंसर्ड ना रह जाए बिना जवाब दिए। पहले तो ईमेल और इतने मोबाइल फोन ये सब तो कुछ था नहीं, तो यीशु दादी ने सारे पत्र लिखवा लिए, जवाब लिखवा लिए। एक तो ये काम अधूरा था, दूसरा था कि ये जो नक्की लेक पर म्यूजियम है ना हमारा, तो वहां पहले वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, वहां प्रदर्शनी लगाई थी 69 में दिसंबर 68 दिसंबर में, तब से वहां प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई थी। तो कुछ विचार चल रहा था इस मकान को ले लिया जाए, टूरिस्ट काफी आते हैं, लेकिन हमारे यज्ञ के पास साधन नहीं थे, इतना धन नहीं था, तो वो पेंडिंग पड़ी हुई थी फाइल। तो उस दिन बाबा ने उस फाइल पर भी साइन करके कि ये इसको ले लिया जाए और यहाँ पर कोई सेवा का साधन बनाया जाए, जो म्यूजियम बना। तो वो बचा हुआ काम रह गया था देखो, तो वो बाबा ने पूरा कर दिया। उस दिन जो भी ऐसे थे, रोज रात को क्लास होती है लगभग 8:45 बजे, यहाँ भी आप देखते होगे ना 8:30 9 के बाद। उस दिन बाबा ने 6:30 के बाद ही कहा 7:45 जमुना प्रसाद भाई को बुला के घंटी बजा के कहो कोई सब आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा। बाबा को आभास होने लगा था कि बस अब मेरी कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्वरूप स्थिति हो गई और अब आत्मा जैसे जाने को तैयार है। तो बाबा ने क्लास भी 2 घंटा प्रीपोन्ड कर ली और सबको इंस्ट्रक्शन दी, सब भोजन करके क्लास में आए। तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी भोजन करा, क्योंकि यही था भोजन करके ना आए, कोई सोचे तो बाद में कर लेंगे, अब बाद में तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी भोजन भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए सब आए क्लास में और बाबा भी क्लास में आ गए। तो बस उस दिन बाबा का स्वरूप भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था फरिश्ता स्वरूप, रुई रुई का सा जैसे शरीर दिख रहा था, बिल्कुल एकदम हल्का जैसे हवा पर तैरते हुए बाबा आ रहे थे। तो साधारण ही लेकिन बिल्कुल, और आके हिस्ट्री हॉल में बाबा ने क्लास कराई। अब वैसे सर्दी के दिन थे, उस दिन सुबह भी और 17 तारीख की रात्रि क्लास को भी बाबा को कई बार जैसे खांसी आती थी, कफ भी आता था, लेकिन 18 तारीख की रात्रि क्लास में आप देखेंगे एक बार भी न बाबा को खांसी आई न कफ आया, और एक बार भी कोई जरा सी भी रुकावट नहीं हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था होती है तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेता है और शरीर का कोई भी कर्म भोग जो है फिर शरीर को परेशान नहीं करता। तो एक बार भी पूरी मुरली सुनो ध्यान से, एक बार भी ना बाबा को खांसी आई ना कफ आया। और उससे भी बड़ी बात, हम भी सामने बैठे मुरली सुन रहे थे, बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चला रहे थे, तो सुनते सुनते हमारे मन में एक विचार आया, या तो आप सब अपने हैं तो आपस में शेयर करते हैं कि बस जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा कभी आते हैं ना तो सबकी दिल होती है भाई स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए, बाबा से दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, होता है ना। तो हमें भी बस बैठे बैठे विचार आया कि भाई बाबा कुछ मेरे मुझे बोले, मेरे बारे में बोले, कुछ मार्ग प्रदर्शना और दे, क्योंकि आसाम इतनी दूर थे, तब विदेश में भी कोई सेंटर नहीं था, दूर से दूर सबसे ज्यादा हम आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन बाबा का हर सप्ताह पत्र आ जाता था, हर सप्ताह ये सेवा करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बस इधर हमारे मन में संकल्प आया, आने की देर नहीं हुई और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, मन जीते जगत जीत बाबा बन चुके थे, तो संकल्प आने की देर नहीं हुई, संकल्प आया तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा और बाबा ने तुरंत मुरली में हमारा नाम लेके कुछ महावाक्य एकदम उच्चार दिए कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। तो लाइक दैट ऐसा बाबा, संकल्प आने की देर नहीं हुई और बाबा ने महावाक्य उच्चार दिए, तो ये इस बात का प्रतीक है, हमें भी दुनिया हमको भी उस निगाह से देखेगी कि यही हमारे ब्रह्मा बाबा है, यही हमारे आदि देव हैं, जो लक्ष्य है उनका, हम उनके जो परम पूज्य हैं, देवी देवता हैं। तो इसीलिए हमें भी यह स्थिति धारण करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में वो इच्छा लेके आएंगे और हम अगर उनकी इच्छाओं को पढ़ ही नहीं सके तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे करेंगे। तो इस कारण से हमें भी ये मन जीते जगत जीत बनना बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे हम दूसरों की इच्छाओं को पढ़ सके। और अंत में बस बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने कभी नहीं पहले निकाले, कभी नहीं, पूरे यज्ञ में इतनी बार प्रातः क्लास हुई, मुरली क्लास हुई, उस दिन बाबा ने ये कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा गए कमरे में और दादी जी के हाथ में हाथ और शरीर छोड़ा। लेकिन हमें ये एक सौभाग्य और मिला कि हम तो उस दिन, उससे पहले 17 तारीख की रात्रि क्लास में बाबा ने कहा था बच्चे दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पर तो बेहद की जमीन है, बेहद तो हॉल की छत पर चले जाए, वहाँ बस विचार सागर मंथन करें, बाबा को याद करें, तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। तो 18 तारीख को बाबा की मुरली भी जल्दी पूरी हो गई थी, भोजन भी सबने कर लिया था, तो हम छत पर टहल रहे थे, इतनी देर में हमने देखा जमुना प्रसाद भाई जो है यहाँ पर, तो वो बड़ी तेजी से साइकिल पर जा रहे हैं, नीचे निकल रहे। तो हमने ऊपर से पूछा, रे अभी आप इतने बजे रात को 9 बजे कहाँ जा रहे हैं इतनी देर में? तो उन्होंने कहा दादी ने मुझे कहा है कि भाई जरा डॉक्टर को बुला के लाओ, और बाबा का तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो उधर डॉक्टर को बुलाने गए और हम भी ऊपर से फिर नीचे उतर के अब बाबा के कमरे की तरफ, वहां पर जो पीछे से दरवाजा है बाबा का, वो जैसा मैंने बताया ना, उधर जाके देखा तो बाबा तो पूरा नहीं दिखे, लेकिन बाबा के सामने दादी जी खड़े हुए थे, बाबा तो जैसे तो चारपाई पर बैठे हुए थे, लेकिन दादी का बैक व्यू ने जैसे वो ढक लिया और बस बाबा, हम ऐसा इमेजिन करते हैं बाबा दृष्टि दे रहे थे दादी को, और उस समय जैसे हमें तो कुछ अंदर तो गए नहीं, बाहर से ही कमरे के बाहर से, क्योंकि दादी जी और इतना मतलब थे वहां, तो बस हम तो बाहर से आ गए। और उसके बाद देखा बाद में तो आप सब जानते हैं जमुना प्रसाद भाई भी आए और किस प्रकार से ये जो है बाबा ने देह त्याग करके अपना गए। लेकिन एक बात और विशेष देखी कि 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, अर्ली नाइट को, और 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की सारी रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद जब बड़ी दीदी टूर पर थी, बड़ी दीदी लौटी, 2 बजे के बाद बाबा का संस्कार किया गया। तो इतनी देर के बाद भी फिर भी बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई लोशन नहीं लगाया गया था, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता मुस्कुराता रहा, लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं और लगेगा कि आओ बच्चे, हमेशा की तरह खड़े होके बाबा कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे। तो ये भी है प्रकृति जीत का लक्षण, 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर है ना, प्रकृति जीत, तो इसको भी बाबा कहता है प्रकृति जीत। तो बाबा भी प्रकृति जीत हो गया था इन 5 तत्वों के ऊपर। तो ये है इच्छा मृत्यु का अवतार, जाना तो सबको है, लेकिन हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ब्यूटी तो ये है, अगर अर्थक्वेक आया और मकान गिरा और हमने भी शरीर छोड़ दिया दुनिया की तरह, तो क्या फर्क रहा दुनिया में और हम में, त्राही त्राही हल्ला गुल्ला चारों तरफ मचा हुआ होगा, उस समय कोई बाबा की याद थोड़ी आएगी। लेकिन हम अपनी इच्छा से, और जैसे बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी ले रहा है, विदा ले रहा है, अपनी इच्छा से बाबा ने जाके तो हम बच्चों को भी ये देखना कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। वो कैसे होगा? बस जस्ट नट शेल में एक एक बात कि ये जो पांच तत्व है ना, ये तत्व हमारा अंत तक साथ दें। इनसे बना हुआ हमारा शरीर है, ये तत्व अंत तक साथ दें, और वो तब होगा जब इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लेंगे। मित्र मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र का प्राण नहीं लेता। तो मानो धरती है, धरती का मुख्य गुण कौन सा है? शीतलता और सहनशीलता। और धरती का सबसे बड़ी गुण है देने वाला, दाता, बोला किसी ने। तो हमारा भी अगर ये संस्कार हो जाए कि कोई भी आत्मा आए खाली हाथ न जाए, मुझे देना है। कोई फिजिकल चीज देने की बात नहीं है, प्रेम है, सहिष्णुता है, सहयोग है, शुभ भावना है, शुभकामना है, आदर है, तो ये चीजों में तो खर्च एक पैसा होता नहीं। तो हर आत्मा को ये अनुभव हो जो बाबा से होता था कि जितना ये आत्मा मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है, उतना किसी को नहीं। हर आत्मा को अपनेपन का अनुभव हो हमसे, और वो तब होगा जब वो हमारे सम्मुख आए और खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ यही धारण करके जाए। तो फिर धरती जितना भी हिलेगी, अर्थ को एकाएंगे, बहुत विनाश होगा, लेकिन विनाश यहां तक आके रुक जाएगा, बाबा ने कहा है, आप तक नहीं आएगा, और आपके पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बाबा की टचिंग ऐसी होगी जिधर सेफ्टी होगी। और बहुत उदाहरण है कच्छभुज से लेकर, अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। ऐसी जल का एक मुख्य गुण कौन सा है? शीतलता, लेकिन एडजस्टमेंट भी है। देखो, जल को गिलास में लिया, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो। ऐसी हम में अगर एडजस्टमेंट का संस्कार हुआ, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चले चल सके। ये नहीं कि भाई फलाना के साथ तो एडजस्ट होके मैं चल सकती हूँ, फलाने के साथ बहुत मुश्किल है। नहीं, सास हो, बहू हो, नंद हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, एडजस्टमेंट का ऐसा संस्कार हो। तो जल का ये संस्कार हमने धारण कर लिया तो जल कभी भी हमारे कष्ट का कारण, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जितनी सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, जितना फ्लड आएगा, पूर आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन जल हमें रास्ता दे देगा बचने का, सेफ्टी का। ये प्रकृति का नियम है, तत्वों का नियम है, जो भक्ति मार्ग में अनेक भक्तों का गायन किया हुआ है, वो इस समय की हमारी ही बात है, वो लिख दिया है भक्ति मार्ग में उनके लिए। तो इस तरीके से ये जल का गुण, बहुत हर एक के कई गुण है, मैं एक को टच कर रहा हूं जरा सा, एक मिनट। तीसरा, आकाश का क्या गुण है? बेहद, बहुत विशाल। सबसे बड़े, जितना विशाल होगा उतना क्षमा भाव उसके दिल में होगा। जो विशाल दिल का होता है क्षमा कर देगा, छोटे दिल का होगा बात याद रखेगा, बदला लेने की भावना, समय का इंतजार करेगा, मौका मिले तो मैं भी बदला लूं आदि। लेकिन इतना आकाश की तरह विशाल दिल हो तो उससे क्या होगा? कोई भी हो, सबके संस्कार तो मिलते नहीं, हमारे सामने देवी परिवार से भी बहुत पेपर आते हैं, लेकिन उसका चाहे जैसा भी व्यवहार हो, हम अपने दिल में उनके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग न रखें, उनको क्षमा करते चलें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर सकेगा, जो महावीर होगा वो ही क्षमा कर सकेगा। तो आज अपने को देखो कि कोई ऐसी आत्मा तो नहीं जिस जो मेरे मन में कचोटती हो कि इसको मुझे पाठ पढ़ाना है, दिखाना है इसको भी। नहीं, हर आत्मा को क्षमा करते चले। इसी तरह वायु का, उससे क्या होगा? अगर आकाश की तरह ये विशालता का गुण धारण कर लिया तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी साधन होंगे, चाहे बम आए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, चाहे बादल फटे, वो बरसात हो, चाहे जो भी ऊपर से आने वाले विनाश के साधन होंगे, मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया तो आकाश हमारी रक्षा के लिए बंधा हुआ है। ये इसलिए ही बाबा प्रकृति जीत बने। वायु का क्या गुण है? हल्कापन। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। दोनों में विपरीत गुण है लेकिन साथ साथ रहते हैं। जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है। तो देखो हमारे विपरीत संस्कार होंगे, सेंटर पे भी सब आत्माओं के एक जैसे संस्कार नहीं, संबंध में, ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, लेकिन विपरीत संस्कार होते हुए भी सह अस्तित्व की भावना, साथ साथ मिलकर प्रेम से रहने की भावना। तो उससे क्या होगा? जब ये होगा हम किसी भी चीज में जीवन में भारी ना हो, कोई भी पेपर आए, परिस्थिति आए, हल्के ही रहे, तो क्या होगा? वायु के जितने भी तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, बवंडर आएंगे, वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वायु को अपने मित्र बना लिया, और मित्र तो मित्र की रक्षा करता है। और इसी तरह अंतिम तत्व है अग्नि। अग्नि में क्या गुण होता है? हर चीज का रूप बदल देती है। तो जो बाबा में देखते थे, देखो दादियों में भी देखते हैं, हम लोग कोई भी कितने भी व्यर्थ विचार के साथ आ रहे होंगे, जैसे ही बाबा के सामने जाते थे एकदम शांत हो जाते थे सारे विचार। बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये सोच के जाते थे, एकदम सब जैसे भूल जाता था, रूप बदल जाता था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आपका भी ज्वालामुखी स्वरूप, ज्वालामुखी योग जितना होगा, तो आत्मा आएंगी, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, उसका रूप बदल जाए। अब वो तभी होगा जितना हमने ज्वालामुखी रूप धारण करा होगा। ज्वालामुखी होगा तो उसका रूप बदल सकेंगे। तो बाबा ने ये सब धारण कर लिया था, इसलिए बाबा प्रकृति जीत हो गया। और इतने शरीर को रखा रहा 65 घंटे तक भी, डॉक्टर भी इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा, कोई भी शरीर की डिसइंटीग्रेशन नहीं, कोई भी वो नहीं। तो भाव क्या है कि हम सबको भी ऐसा बनना है बाबा के समान। तो बाबा ने जो दिखाया, करके दिखाया, ऐसे तो बहुत सारे वो हैं, लेकिन समय के साथ साथ चलने के कारण बस एक लक्ष्य लेकर इस भट्टी से जाए कि मुझे बाबा समान प्रकृति जीत और मन जीत बनना है। ओम शांति, ओम शांति।
अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रहे जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।